लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवारीय आम दर्शन समारोह हेतु संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
कारी फ्रातेल्ली सोरेल्ले, बुनजोर्नो। Nell'altra udienza abbiamo parlato sui bambini. Anche oggi parleremo sui bambini.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हमने अपने पिछले आम दर्शन समारोह में बच्चों के बारे में बातें की। आज भी हम बच्चों के बारे में बातें करेंगे। पिछले सप्ताह हमने इस बात पर गौर किया कि अपने कार्य में यीशु कैसे निरंतर बच्चों का बचाव करते हुए उनका स्वागत करते और उन्हें प्रेम करते हैं। यद्यपि आज की दुनिया में हजारों लाखों की संख्या में नाबालिग विशेषकर खतरे से भरे स्थानों में कार्य करने को बाध्य किए जाते हैं, हम इस बात की चर्चा नहीं कर सकते हैं कि कितने लड़के और लड़कियां मानव व्यापार का शिकार होते और उन्हें देह व्यापार या अश्लीलता और जबरदस्ती विवाहों का शिकार होना पड़ता है। हमारे समाजों में दुर्भाग्यवश बहुत से रूप हैं जहां बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। बाल शोषण, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो, अपने में घृणित और कलंकित कार्य है। यह समाज में न केवल एक धब्बा और एक अपराध है, बल्कि यह ईश्वर की संहिता का एक घोर उल्लंघन है। किसी भी बच्चे को शोषण का शिकार नहीं होना चाहिए। संत पापा ने कहा, एक भी ऐसी घटना अपने में बहुत अधिक है, अतः हमें चाहिए कि हम इसके संबंध में जागरूकता लाएं, शोषण के शिकार बच्चों और युवा लोगों के संग निकटता और सच्ची एकात्मकता प्रदर्शित करें। इसके साथ ही हमें चाहिए कि हम विश्वास और उन लोगों के बीच तालमेल स्थापित करें जो उन्हें अवसर और सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहां वे शांतिपूर्ण ढंग से विकास कर सकें। संत पापा ने कहा, विस्तृत दरिद्रता, परिवारों को सामाजिक सहयोग की कमी, आए दिनों में विस्थापन के साथ बेरोजगारी और रोजगार की असुरक्षा वे कारण हैं जो युवाओं को बोझिल करते और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। महानगरों में समाज का टूटना और नैतिक गिरावट जो चुभती है, जिसके कारण बच्चे मादक पदार्थों के विक्रेता और बहुत सारे अनैतिक कार्यों में फंस जाते हैं। हम में से कितनों ने इन बच्चों को सामाजिक बुराइयों का शिकार होते देखा है। कभी कभी दुखद रूप से वे अपने साथियों के उत्पीड़न का शिकार होते हैं। वे अपने को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अपनी गरिमा और मानवता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके बावजूद जब हम सड़क पर पड़ोस में इन खोई हुई जिंदगियों को अपनी आंखों के सामने देखते, तो हम अक्सर अपनी निगाहें दूसरी ओर फेर लेते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने अपने देश के एक बालक लोआन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विश्व में फैली मानव अंग व्यापार की ओर सबों का ध्यान आकर्षित कराया, जिसके चलते कितने ही बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। संत पापा ने कहा कि सामाजिक अन्याय के कारण दो बच्चे जो शायद एक ही पड़ोस में रहते हैं, नाटकीय रूप में विरोधाभाव राहुंग और भाग्य का चुनाव करते हैं, क्योंकि उनमें से एक का जन्म वंचित परिवार में हुआ है। एक अस्वीकार्य और सामाजिक विभाजन जहां हम एक को सपने देखता और दूसरे को इसका शिकार होता पाते हैं। लेकिन यीशु हमारी स्वतंत्रता और खुशी की चाह रखते हैं, और यदि वे हर नर और नारी को अपनी संतान की भांति प्रेम करते हैं तो वे सबसे छोटों को और भी अधिक अपने हृदय की कोमलता से प्रेम करते हैं।
Perciò ci chiede di fermarci e di prestare ascolto alla sofferenza di chi non ha voce.
यही कारण है कि वे हमें रुककर दुख सहने वालों जिन्हें कोई नहीं पूछता है अशिक्षितों को सुनने के लिए कहते हैं। शोषण के विरुद्ध संघर्ष, विशेषकर बच्चों के विरुद्ध होने वाले शोषण के खिलाफ पूरे समाज के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करने का मार्ग है। कुछ देशों ने अपने विवेक में बच्चों के अधिकारों की सूची तैयार की है। बच्चों के अधिकार हैं। हम बच्चों के अधिकारों को इंटरनेट में देख खोज सकते हैं। संत पापा ने सबों के सामने सवाल रखते हुए कहा,
Io cosa posso fare?
मैं क्या कर सकता हूँ? सर्वप्रथम हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि यदि हम बाल श्रम को जड़ से खत्म करने की चाह रखते हैं तो हम इसमें सहभागी ना हों, और हम कब ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जब हम उन चीजों को खरीदते जिसमें बाल श्रम लगा है, यह जानते हुए कि उन कपड़ों और खाद्य सामग्री में बच्चों का शोषण शामिल है, हम कैसे उस भोजन को खा सकते और उस कपड़े को पहन सकते हैं जिन्हें विद्यालय जाने के बदले में श्रम करना पड़ता है।
La consapevolezza su quello che acquistiamo è un primo atto per non essere complice.
उन चीजों के प्रति सचेत रहना जिन्हें हम खरीदते हैं हमारी ओर से उनमें सहभागी न होने का प्रथम कदम होगा। हमें यह देखने की आवश्यकता है कि चीजें कहां से आ रही हैं। संत पापा ने कहा, हम व्यक्तिगत रूप में अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं, यह सच है, लेकिन हम एक बूंद हो सकते हैं जो हमें दूसरों के संग एक करता है, जो एक सागर में बदल जाता है। हालांकि संस्थानों जिसमें कलीसियाई संस्थानें, और हमें चाहिए कि हम कंपनियों को वे अपनी पूंजी को दूसरे कंपनियों में लगाते हुए इसमें एक बड़ा अंतर ला सकते हैं, जिनमें बच्चों या बाल श्रम का उपयोग नहीं किया जाता है। कई राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पहले ही बाल श्रम के विरुद्ध कानून और दिशा निर्देश बनाए हैं, लेकिन अभी और भी कुछ किया जाना बाकी है। मैं पत्रकारों से अपनी भूमिका निभाने का आग्रह करता हूं, संत पापा ने कहा। वे समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। आप बिना भयभीत हुए ऐसी बातों का विरोध करें। संत पापा ने उन लोगों के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किए जो बच्चों को अतिशीघ्र प्रौढ़ होने के दबाव में देखने के विरुद्ध कार्य करते हैं। हम सदैव यीशु की बातों को याद करें, जो कुछ तुमने इनमें से सबसे छोटे भाइयों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। कोलकाता की मदर संत मदर तेरेसा, जो ईश्वर की दाखबारी में खुशी से कार्य करती थीं, अपने में बहुत से वंचित और भुला दिए गए भाई बहनों के लिए एक माता की भांति थी। अपनी कोमल और सतर्क निगाहों में वह हमें अदृश्य छोटे बच्चों को देखने में मदद कर सकती हैं। एक ऐसी दुनिया के बहुत सारे गुलाम जिन्हें हम अन्याय के हवाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कमजोरों की खुशी शांति का निर्माण करती है, और मदर तेरेसा के संग हम बच्चों की आवाज बनते हैं। मैं एक सुरक्षित स्थान की मांग करता हूँ जहाँ मैं खेल सकूँ। मैं किसी से एक मुस्कान की मांग करता हूँ जो यह जानता है कि कैसे प्रेम किया जाता है। मैं एक बालक होने के अधिकार की मांग करता हूँ जिससे मैं एक बेहतर भविष्य की आशा बन सकूं। मैं एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने की मांग करता हूं। क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं? इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों और तीर्थ यात्रियों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sing nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in
saeculum. Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui creas in caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवारीय आम दर्शन समारोह से पहले संत पापा फ्रांसिस ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में कारितास के अध्यक्षों और राष्ट्रीय निदेशकों के साथ मुलाकात की, जो रोम में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य के प्रक्रियाओं को मजबूत करने में उनके प्रयासों के लिए उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया, जिसे हम सुरक्षा कहते हैं। स्पानी भाषा में सुरक्षा शब्द को हिरासत, संरक्षण, गारंटी के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि उन्होंने आगे कहा, इस अर्थ के साथ एक और अर्थ है, एक संकेत जो युद्ध के समय सैन्य कमांडरों के आदेश से शहरों के प्रवेश द्वारों पर या घरों के दरवाजों पर रखा जाता है, ताकि उनके सैनिक उन्हें नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने टिप्पणी की कि इसे पढ़ते समय सबसे पहले जो बात दिमाग में आई वह नबी इज़ेकियल और प्रकाशना ग्रंथ का पाठ था, जिसमें प्रभु अपने दूत से पूछते हैं, उन लोगों के माथे पर एक टी का निशान लगाओ जो सभी घृणित कार्यों पर पश्चाताप करते और विलाप करते हैं। संत पापा ने कहा कि वास्तव में प्रभु हमसे अपने दूतों से उन सभी लोगों के माथे पर जो धन्य क्रूस का निशान लगाने के लिए कहते हैं, जो हमारे कारितास में आते हैं और उनके खिलाफ किए गए कई अन्यायों, यहाँ तक कि घृणित कृत्यों पर विलाप करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस निशान को वस्तुतः हर उस व्यक्ति पर लगाने का अर्थ है जिसे हम अपने जीवन में मिलते हैं, मसीह में भाइयों के रूप में उनकी गरिमा को पहचानना। इस अर्थ में सुरक्षा एक दिव्य नाम है, यह स्वयं मसीह है जो हर पुरुष और महिला के माथे पर लिखा है और एक दर्पण की तरह हम में से हर एक के दिल में है, जो अपनी नाजुकता में दान और देखभाल के छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से उनके प्यार के वाहन बनना चाहते हैं। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने प्रार्थना की कि यीशु उपस्थित लोगों के प्रयासों को पुरस्कृत करें, पवित्र आत्मा उनके काम का मार्गदर्शन करें और माता मरिया उन्हें अपने आंचल से ढके, ताकि आप उनसे सभी लोगों की देखभाल और सुरक्षा करना सीख सकें। और संत पापा फ्रांसिस ने अपने साप्ताहिक आम दर्शन समारोह के दौरान बच्चों पर अपनी धर्म शिक्षा माला में विशेष रूप से अस्वीकार्य दुर्व्यवहार और शोषण से बच्चों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन पर शिक्षा दी। इसी के मद्देनजर संत पापा ने आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यीशु चाहते हैं कि हम स्वतंत्र और खुश रहें, इसलिए वह हमसे कहते हैं कि हम रुके और बेजुमानों की पीड़ा सुने। शोषण, खास तौर पर बाल शोषण से लड़ना, पूरे समाज के लिए बेहतर भविष्य बनाने का मार्ग है। और संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान इतालवी भाषी तीर्थ यात्रियों को संबोधित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उत्तरी म्यांमार के काचिन राज्य के जेड खनन क्षेत्र में हुए विनाशकारी भूस्खलन के प्रभाव से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करने का आह्वान किया। यह भूस्खलन सोमवार की रात को हुआ। एसोसिएट प्रेस के अनुसार कम से कम एक दर्जन लोग मारे गए, कई अन्य लापता हैं और कम से कम 50 घर दब गए या क्षतिग्रस्त हो गए। संत पापा ने कहा कि वे इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के करीब हैं और अपनी जान गंवाने वालों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमेशा की तरह संत पापा सभी से आग्रह किया कि वे चल रहे युद्धों और संघर्षों से पीड़ित लोगों की मदद करें। उन्होंने जोर देकर कहा, हमें यूक्रेन, म्यांमार, फिलिस्तीन, इसराइल और युद्ध में शहीद हुए कई देशों को नहीं भूलना चाहिए। सभी विश्वासियों से शांति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि युद्ध हमेशा एक हार है। संत पापा ने आग्रह किया, आइए हम हथियार निर्माताओं के दिलों को बदलने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे अपने उत्पादों के साथ हत्या करने में मदद करते हैं। पिछले बुधवार की तरह आज भी संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में फिर से एक सर्कस का प्रदर्शन हुआ। इस बार रोनी रोलर, एक प्राचीन इतालवी सर्कस परिवार जो पहले भी संत पापा फ्रांसिस को अपनी कला दिखा चुका था, आज मनोरंजन के लिए बाजीगरों, कलाबाजों और यहाँ तक कि एक छोटे कुत्ते को भी प्रदर्शन में शामिल होते देखने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से किए गए इस कार्य के लिए सर्कस को अपना धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, सर्कस का काम एक मानवीय काम है, एक कलात्मक काम है, बहुत मेहनत का काम है। आप सबों को धन्यवाद। और क्यूबा सरकार ने संत पापा फ्रांसिस द्वारा घोषित 2025 की साधारण जयंती की भावना में 553 कैदियों को रिहा करने के निर्णय की घोषणा की है। इस महीने की शुरुआत में क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल द्वारा संत पापा फ्रांसिस को लिखे गए पत्र में इस निर्णय के बारे में बताया गया था, जिन्होंने संकेत दिया कि कैदियों की रिहाई 2025 की साधारण जयंती की भावना में की जाएगी। कैदियों की रिहाई ने संत पापा के साथ पिछले संबंधों को भी चिन्हित किया। 1998 में जब संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने देश का दौरा किया तो फिदेल कास्त्रो ने लगभग 200 कैदियों को रिहा किया। 2012 में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें की क्यूबा यात्रा की पूर्व संध्या पर हजारों कैदियों को उनकी स्वतंत्रता दी गई। और 2015 में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा से पहले लगभग 3,500 कैदियों को रिहा किया गया था। और वाटिकन के राज्यों के साथ संबंधों के सचिव ने प्राकृतिक आपदाओं के चल रहे प्रभावों के मद्देनजर कोंगो के लोगों के साथ संत पापा फ्रांसिस की एकजुटता व्यक्त की। पिछले कुछ दिनों से राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पोल रिचर्ड गल्लाघेर कोंगो गणराज्य में हैं। वे फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त आयोग की शुरुआत में भाग ले रहे हैं। 2017 में हस्ताक्षरित 2019 से प्रभावी यह समझौता कोंगो ब्राजाविल में कलीसिया और उसके संस्थानों की कानूनी स्थिति को मान्यता देता है और उनकी स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।